दीवा ने बातों ही बातों में डेट के लिए प्रार्थना को हाथों कह दिया था कि वो उसकी अरेंज की हुई डेट पर चली जाएगी, लेकिन बाद में वो उसे भूल गई थी। प्रार्थना ने उसे याद दिलाने के लिए वापस मैसेज किया तो दीवा को याद आया कि उसने इस बारे में आर्यांश को नहीं बताया है। पहले वो इस बारे में आर्यांश को बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब आर्यांश को उसके रक्षित से मिलने की बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ऐसे में अगर दीवा उससे कुछ छुपाती भी तो वो कैसे ना कैसे करके पता लगा ही लेता। यही सोचकर दीवा आर्यांश को सब बताने का फैसला किया। वो हॉस्पिटल से फ्री होकर सीधा आर्यांश के विला पहुंची। दीवा की गाड़ी जैसे ही घर के अंदर पार्क हुई, उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर आर्यांश जल्दी से बाहर आया। उसने अपनी बाहें फैला ली थीं। उसे देखते ही दीवा जाकर उसके गले लग गई। सुबह से शाम तक आर्यांश दीवा से दूर था। उसने उसे बहुत मिस किया था। उसने दीवा को अपनी बाहों में कसकर भर लिया था। वो उसके बालों की खुशबू लेते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? दीवा ने जवाब में इतना ही कहा। उसने आर्यांश को कसकर पकड़ लिया था, जिससे आर्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। न जाने क्यों, पर दीवा जब भी आर्यांश की बाहों में आती तो उसे सुरक्षित महसूस होता। आर्यांश दीवा से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, मैं तुमसे पहले ही आ गया था, क्या तुम अब फ्री हुई थी? दीवा उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आर्यांश ने उसके होठों को चूम लिया था। वो उसे काफ़ी हंग्रीली किस कर रहा था। उसके साथ रहते हुए आर्यांश को दीवा की आदत लग गई थी। पूरा दिन उसके साथ बिता पाना आर्यांश के लिए मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ सुमन किसी काम के चलते बाहर आई थी। उसने आर्यांश और दीवा को इस तरह किस करते देखा तो वो हड़बड़ा गई थी। दीवा का चेहरा उनकी तरफ था। दीवा की नज़र उन पर पड़ते ही उसने जल्दी से आर्यांश को खुद से दूर धकेल दिया। सुमन माँ यही है, दीवा ने अपनी नज़रें नीचे करके धीमी आवाज़ में कहा। आर्यांश को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने सुमन की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, लेकिन ये तो यहीं पर रहती है और काम के चलते इन्हें सब जगह जाना पड़ता है। तुम भूल जाओ कि ये हमें देख रही है ना सुमन माँ? उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। सुमन ने हंसते हुए हाथ झटक कर कहा, हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं देखा, समझ लीजिए मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ। अपनी बात खत्म करके सुमन जल्दी से वापस अंदर की तरफ चली गई। उनकी हंसी ने दीवा को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। उसका चेहरा लाल हो रहा था। दीवा आर्यांश की तरफ घूरकर कहा और कहा, ये सब हम अपने बेडरूम में नहीं कर सकते, मुझे फिर सुमन माँ के सामने जाने में एम्बेरसमेंट फील होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई बच्ची नहीं है, हो सकता है जवानी में उनका भी कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, आर्यांश ने कंधे उठाकर कहा। उसकी बातों से भी दीवा कन्विंस नहीं हुई थी। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने आर्यांश को वहीं पर छोड़ दिया और फिर लिविंग रूम में चली गई। उसे आर्यांश को काफ़ी कुछ बताना था और आर्यांश को ये सब पता चल गया था। आर्यांश मुस्कुराते हुए उसके पीछे आया, लेकिन उसने देखा दीवा परेशानी से वहां बैठकर पानी पी रही थी। आर्यांश के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने दीवा के पास जाकर कहा, कुछ कहना है तुम्हें मुझसे, नर्वस लग रही हो। दीवा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर इधर उधर देखने लगी। वो जो आर्यांश को बताने वाली थी वो इतना भी आसान नहीं था। आर्यांश उस पर गुस्सा कर सकता था। आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा और मन ही मन कहा, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है, जो कहना है सीधे बोल क्यों नहीं देती, ज़रूर इसने बाहर कोई गड़बड़ की है तभी इतना घबरा रही है। आर्यांश ने अपने कदम दीवा की तरफ बढ़ाए। उसने सवालिया नज़रों से दीवा की तरफ देखा तो दीवा हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें बता तो दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। दीवा अच्छे से जानती थी कि वो जो कहने जा रही है उसे सुनकर आर्यांश को गुस्सा आएगा, इसलिए वो पहले ही वादा ले रही थी। अच्छा ठीक है बताओ, आर्यांश ने हल्का मुस्कुराकर कहा और उसके सामने सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया था। नहीं, तुम प्रॉमिस करो तभी मैं बताऊंगी, दीवा जिद पर अड़ते हुए बोली। ठीक है आई प्रॉमिस, चलो बताओ, आर्यांश बोला। वो भी जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या था जिसे कहने से पहले दीवा इतना डर रही थी। लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी तब मॉम ने मुझे एक डेट पर जाने को कहा था, वो मेरा रिश्ता किसी के साथ तय करना चाहते हैं। मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में हाँ कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं नहीं जाना चाहती लेकिन उनका मैसेज आया है, मैं अब तक उन्हें टाल ही रही थी लेकिन अब तो हद हो गई, उन्होंने मुझे लोकेशन और टाइम तक मैसेज कर दिया। दीवा अटकते हुए अपनी बात को पूरा कर ही दिया था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक आर्यांश के चेहरे पर एक सस्पिशियस सी स्माइल आ गई थी। उसने दीवा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें चले जाना चाहिए था। बस मेरा मन नहीं किया, दीवा ने जवाब दिया। वो जानती थी कि आर्यांश को बिना बताए जाने का मतलब क्या था, वो उसे धोखा नहीं देना चाहती थी क्योंकि इसका अंजाम बुरा हो सकता था। फिर भी तुम्हें चले जाना चाहिए था, कल को मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो कोई ना कोई चाहिए होगा ना तुम्हें शादी करने के लिए, आर्यांश ने सार्कास्टिकली कहा। अब तो दीवा को उससे और डर लग रहा था जिस लहजे में वो बात कर रहा था। ऊपर से उसके चेहरे पर जो अजीब रहस्यमयी मुस्कुराहट थी वो दीवा के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। दीवा को मन ही मन पछतावा हो रहा था कि उसने आर्यांश को इस बारे में बताया ही क्यों, वो डायरेक्ट डेट पर जा सकती थी। दीवा ने हिम्मत इकट्ठा की और कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। अचानक आर्यांश खड़ा हुआ और उसने दीवा की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, अगर नहीं जाना था तो मुझे क्यों बताया? तुम अच्छे से जानती हो मिस गोयंका कि अगर मैं तुम्हें पकड़ लेता तो अंजाम अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से मेरे सामने ये ईमानदारी का दिखावा कर रही हो। आर्यांश ने दीवा के सच को पकड़ लिया था। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आर्यांश से उसे तभी डर नहीं लगता था जब वो उसके साथ प्यार से पेश आता था। उसके अलावा आर्यांश का अजीब बिहेवियर झेलना उसके लिए आसान नहीं था। आर्यांश की आंखों में देखना दीवा के लिए मुश्किल हो रहा था। वो पकड़ी गई थी तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। कुछ देर तक उनके बीच बिल्कुल खामोशी छा गई। अचानक आर्यांश ने तेज आवाज में पूछा, कब और कहाँ जाना है? कल हॉस्पिटल के टाइम के बाद। हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर एक कैफेटेरिया है, लवली पॉइंट्स करके नाम है, वहीं पर मिल रहे हैं। दीवा ने पूरी ईमानदारी से उसे सब बता दिया। अरे वो जगह तो कमाल की है, कुछ सोच समझ कर ही चुनी गई होगी, वहां तो इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं, आर्यांश ने उसे टॉन्टिंग वे में कहा। दीवा को लगा था कि उसका बचा हुआ टाइम अच्छे से बीतेगा। उसने अपने घर के चलते आर्यांश के साथ रहना मंजूर तो किया था, पर अभी जो हालात चल रहे थे उससे साफ था उसका आर्यांश के साथ रहना आसान नहीं होने वाला। दीवा अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी आर्यांश ने उसे अपनी बाहों में खींचा और धीमी सर्द आवाज में कहा, तुम आर्यांश कपूर की वाइफ हो, अपनी लिमिट्स में रहना मिस गोयंका, ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे हर्ट हो। वो उसे पहले ही वार्निंग दे रहा था। दीवा चुपचाप खड़ी थी तो आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, समझ गई। दीवा को पछतावा हो रहा था कि उसने प्रार्थना को ऐसा कोई वादा किया ही क्यों। अब तो वो खुद किसी डेट पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो आर्यांश और प्रार्थना के बीच में फंसकर रह गई थी। दीवा को इस तरह घबराता हुआ देखकर आर्यांश ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जब तुम इतना परेशान हो रही हो तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाओगी, एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए।
दीवा आर्यांश की तरफ देखने लगी। आर्यांश ने उसे हाँ कह दिया था, कहीं इसमें भी उसकी कोई छुपी साजिश तो नहीं ताकि वो बाद में उसे परेशान कर सके? दीवा ने जल्दी से नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूं, मैं मना कर दूंगी। दीवा को दिख रहा था कि अगर इस डेट के दौरान उसने एक भी गलती की तो उसकी सजा उसे ही भुगतनी थी, इससे अच्छा था कि वो कहीं जाए ही ना। दीवा के चेहरे पर डर के भाव देखकर आर्यांश ने कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हें खुद कहा ना कि तुम जाओ। ठीक है, दीवा ने हाँ कह दी थी। उसकी आंखों में लाचारी के भाव थे। वहीं आर्यांश भी इस बात को लेकर बेफिक्र था कि दीवा उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी, वैसे भी कोई उसकी टक्कर में नहीं था। आर्यांश के जाने के बाद दीवा ने भी प्रार्थना को डेट के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन क्या ये सच में इतना ही आसान होने वाला था? खासकर तब जब आर्यांश को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था।